हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रूहान के कानों में जैसे अनाही की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो उसके गाल पर मौजूद उस स्टीयश दिल को तलबगार नज़रों से देखते हुए करीब बढ़ रहा था। उसने अपनी एक उंगली से उसके दिल को छूकर देखा और उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कुछ पल के लिए वक्त थम सा गया हो। वहीं अनाही का पूरा शरीर कांप गया था। रूहान को अपने नज़दीक आता देखकर वो झट पटारी और रूहान को बेड पर धक्का देते हुए तूफान की रफ्तार से उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। रूहान बस माथे पर बल डाले खुद को संभालता रह गया और अनाही तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। उसे बेहद डर लग रहा था अब रूहान के आसपास रहने से भी। कमरे से बाहर निकलते ही अनाही ने अपने सीने पर हाथ रख के तेज तेज सांस लेते हुए कहा, ये क्या था? मुझे तो लगा था मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, पर मुझे तो बेहद डर लग रहा है। अब मैं कमरे के अंदर भी कैसे जाऊंगी? अनाही का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। चलते वक्त उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। वो दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियों तक पहुंची और फिर लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर वो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल सजाते हुए नीचे गई। निवेदिता, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसने उसे अकेले आते देखकर उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा आज रूहान नहीं आया? माधवी ने जल्दी से कहा, हाँ बेटा उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अनाही ने अपना गला सही करते हुए कहा, एक्चुअली उन्होंने कहा है कि वो ऑफिस में काम करके थोड़ी ज्यादा थक गए हैं, इसलिए खाना ऊपर ही मंगवाया है। मैं खाना खाकर ले जाऊंगी, आप लोग परेशान मत होइए। ये सुनकर माधवी ने मुंह बना लिया तो वहीं बाकी सबने खाना शुरू कर दिया। अनाही ने अपने पास बैठे वेदांत से कहा, आज बिहार भी नहीं आई डिनर पर? वेदांत ने भी ठीक उसी तरह बहन बहन बनाते हुए कहा, वो भी काफी थकी हुई है, पहली बार कॉलेज गई थी ना, बस इसीलिए। अनाही ने हाँ में सर हिला दिया और बाकी सबने भी चुपचाप खाना शुरू किया। फिर उस शांति को तोड़ते हुए जिग्नेश की आवाज आई, वेदांत अगर रूहान लाइफ टाइम तुम्हारे साथ काम करना चाहता है तो क्या तुम उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट शेयर करोगे या फिर उसे एज एम्प्लॉय इनकम दोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा मानता हूँ, तो अगर तुम उसे कंपनी का 50% शेयर नहीं दोगे तो मैं उसकी अलग कंपनी खड़ी करने में उसकी मदद करूंगा। और अगर तुम दोनों भाइयों को आपस में कोई दिक्कत नहीं है तो तुम खुद इसका सब कुछ देख सकते हो। रितेश और जिग्नेश को कहीं ना कहीं पता था वेदांत ने अपनी कंपनी अपने बलबूते पर खड़ी की है, उसमें उसकी आधी उम्र निकल चुकी है और अब अगर कोई ऐसे ही अचानक आकर उसका 50% शेयर मांगेगा तो वो नहीं दे पाएगा और इसी चक्कर में शायद रूहान की फिर से वेदांत से बहस हो जाए और इसका कारण कहीं न कहीं अनाही भी बन सकती थी। अगर वो रूहान को जाकर बताए कि वेदांत ने उसे 50% शेयर देने से मना कर दिया है। पर वहाँ बैठा हर शख्स हैरान हो गया जब वेदांत ने अपनी बात कही। वेदांत ने अपने होठों पर लगे खाने को जीभ घुमाकर साफ करते हुए कहा, ताऊ जी ये कंपनी ऑलरेडी 60% रूहान के नाम ही है, मेरा तो बस 40% है। वो वहाँ काम नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन जब मैंने कंपनी बनाई थी तब सबसे पहले मैंने उसे ही मिठाई खिलाई थी, उसे ही अप्रोच भी किया था। मैं तो बस उसका एम्प्लॉयर हूँ जो काम करता हूँ, बाकी अभी मैं उससे ये सब शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मुंह में चांदी की चम्मच देने से वो समझदार नहीं बनेगा, उसे खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा अगर वो कोई स्टार्टअप भी करे तो आपको उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस इंडस्ट्री के लोगों से मिलेगा, कुछ एक्सप्लोर करेगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आप सीधा ही उसे इन्वेस्टर से मिला देंगे और उसकी डील्स करवा देंगे तो उसे दुनियादारी की समझ कभी नहीं हो पाएगी। वेदांत की बात सुनकर जिग्नेश का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे पता नहीं था वेदांत रूहान के बारे में इतना सोचता है। उन्हें तो लगा था वेदांत की जिंदगी में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है, ना कोई रिश्ता है और ना ही परिवार। वहीं निवेदिता ने मुस्कुराते हुए वेदांत को देखा और फिर अपने मन ही मन कहा, मेरी परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती और वैसे भी बेटे नमन निमानी के हैं, जिसके खून में अपनों के लिए कितना प्रेम बसता है ये पूरा गुजरात जानता है। अब उसका खून है तो अपनों के बारे में सबसे पहले सोचना इसके लिए बहुत ही आम बात है। वहीं माधवी और राधिका का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। वो तो रूहान के छोटे मोटे खर्चे उठाकर ही उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे और यहाँ उसका भाई उसकी आगे आने वाली जिंदगी के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी बना चुका है, उसके बाद भी वो उसके सामने एक भी एहसान नहीं चाहता है। और जिस दिन रूहान को ये सब पता चलेगा उस दिन वो शायद कभी भी अपने ताई और चाचा की तरफ ना हो बल्कि अपने भाई की ही साइड लेगा। ये सब सोच सोच कर ही उन चारों का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उन सब की नजरें आपस में मिल रही थीं, जैसे एक दूसरे को फटकार लगा रही हों कि इतने दिन इस घर में रहने के बाद भी उनको ये सब पता नहीं था। वेदांत को कंपनी शुरू किए हुए 5 साल हो चुके हैं और किसी को इस बात की भनक भी नहीं हो पाई। वहीं अनाही का रहा सहा शक भी दूर हो चुका था इस बात को लेकर कि कहीं वेदांत ही तो रूहान को पसंद नहीं करता। अब उसे पता चल चुका था वेदांत के लिए रूहान कितना मैटर करता है। वेदांत ने आगे कहा, इस बारे में मैं अनंत से बात की थी और उसने ही मुझे कहा कि मैं रूहान को ये सब ना बताऊं, क्योंकि इस घर में सबसे ज्यादा वही परेशान है, रूहान की इन अजीबोगरीब हरकतों से और इसकी इस नशे की लत से। इस वजह से मैं भी उसकी बात सही मानी। वो वैसे मुझसे छोटा है पर काफी समझदारी वाली बातें करता है। मुझे सुनकर जिग्नेश के चेहरे पर हल्का गुस्सा उतर आया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के बेटे को अपने वश में करते करते कब खुद के बेटे को अपने हाथों से रिहा कर चुके थे, इस बात की उन्हें कभी खबर भी नहीं हो पाई। अनंत रूहान से बड़ा था तो वहीं वेदांत से 1 साल छोटा था और वो बाहर US में अपनी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद भी वो वापस नहीं लौटा और इन सब में माधवी ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा है। उसकी सारी इच्छा पूरी करना माधवी अपना फर्ज समझती है। जिग्नेश ने एक गुस्से भरी नज़र माधवी पर डाली और फिर जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करते हुए बोले, चलो कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। एक एक करके बाकी सबने भी अपना खाना खत्म किया और उसके बाद टेबल पर सिर्फ अनाही रह गई थी, क्योंकि उसे रूहान के लिए खाना लेकर जाना था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब रूहान उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा। अनाही ने जल्दी जल्दी एक प्लेट में खाना लगाते हुए कहा, मैं ये खाना उनके पास रखकर जल्दी से बालकनी में चली जाऊंगी। हाँ, ये सबसे आसान तरीका है उनसे बचने का। अनाही को साथ ही साथ मन ही मन पूरा लग रहा था कि उसे अपने ही पति से बचाव के लिए तरीके सोचने पड़ रहे थे। उसका दिल दुख रहा था ये बात सोचकर। उसने अपने गले में होते दर्द को इग्नोर करते हुए अपना सलाइवा गटका और फिर तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाकर तो रूहान ठीक वैसे ही बेड पर लेटा हुआ था जैसे वो छोड़कर गई थी। उसके दोनों पैर बेड से नीचे लटक रहे थे तो वहीं दोनों हाथ बेड पर फैले हुए थे। अनाही दबे कदमों से अंदर गई और फिर बेड के पास रखी टेबल पर वो खाने की प्लेट रखते हुए रूहान से करीब 10 कदम दूर जाकर बोली, रूहान जी खाना खा लीजिए, भूखे पेट नहीं सोते हैं।
रूहान ने जैसे ही अनाही की लड़खड़ाती आवाज सुनकर कसम साकर अपनी आंखें खोली। अनाही फुल स्पीड से दौड़ती हुई बालकनी में चली गई और ग्लास डोर को अपनी तरफ से बंद करके उसने पर्दे लगा लिए। रूहान अध खुली आंखों से बस उसे देखता रह गया और उसे वैसे ही लेटे हुए कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला।